ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे बीच में आदरणीय उषा दीदी जी विराजमान हैं। हम एक हाथ की ताली से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। सृष्टि महापरिवर्तन की ओर तीव्र गति से अग्रसर है और परमात्मा ने हम सबको इसका माध्यम बनाया है, परंतु फिर भी कुछ विशेष ज्ञान सितारे हैं जो इस यज्ञ की शान हैं और जिन्होंने प्यारे बाबा के ज्ञान और पहचान को जन जन तक पहुंचाने में विशेष भूमिका अपनाई है। उसमें विशेष हमारी जो ज्ञान सितारा कहें, ज्ञान रतन कहें, बाबा की नूरे रतन कहें, हमारी आदरणीय उषा दीदी जी हैं जो हम सबके सम्मुख हैं। आप बाबा की अथक सेवाधारी हैं और देश विदेश में अनेक आत्माओं तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाने के निमित्त बनी हैं। आपका लौकिक जन्म जाम्बिया अफ्रीका में हुआ और 1974 में आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में जब आए तो आपको यहाँ की फिलॉसफी, व्यवहारिक ज्ञान, ध्यान सब बहुत अच्छा लगा और उससे प्रभावित होकर उन्होंने निर्णय लिया अपने जीवन को मानव जगत की सेवाओं में समर्पित कर दिया। और आप बहुत लंबे समय से हेडक्वार्टर माउंट आबू में ही अपनी सेवाएं दे रही हैं। यूं तो आप संपूर्ण विश्व में अपनी सेवाएं देती रहती हैं। आप सीनियर राजयोग प्रशिक्षिका हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी हैं, ट्रेनर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपने 1985 में यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूथ प्रोग्राम के अंतर्गत भारत यूनिटी यूथ मार्च में अग्र हिस्सा लेकर मुंबई दिल्ली के बीच अनेकों गांवों शहरों में पैदल चलकर आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार किया। भारत की कई नामी ग्रामी इंडस्ट्रीज कंपनीज आदि में सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपने कराई है और बहुतों का परिवर्तन किया है। कई कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सामाजिक संस्थाओं में आपने हजारों प्रेजेंटेशंस दिए और प्यारे बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा फहराया है। आपने अनेकों सर्वधर्म सम्मेलनों में गीता ज्ञान दाता की स्पष्टता की है, जिसके लिए बाबा अक्सर कहते हैं। भारत के दो मुख्य ग्रंथ जो हैं रामायण और गीता, उनका विश्लेषण कर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या उपयोगिता है, समझ है पात्रों का, वो सारा आपने बहुत ज्ञान का मनन चिंतन करके स्पष्टता से बताया है। कई किताबें भी लिखी हैं, जिसमें मुख्य दो किताबें सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप अध्यात्म की और आदि हैं, जिसको पढ़कर हम अपना भी पुरुषार्थ कर सकते हैं और सेवा में भी वो हमें मदद करती हैं। इस तरह से आपकी अगर पहचान बताएं, विशेषताएं बताएं तो अनेकों अनेक हैं। फिर भी संक्षिप्त में आपका परिचय के साथ मैं दो लाइन कहना चाहूंगी। ज्ञान की लौ से ध्यान की धरा से आप जीवन को नव प्रकाश देती हैं। संस्कारों की गहराई से स्नेह भरी वाणी से हर मन में आत्मविश्वास भर देती हैं, हर मन में विश्वास भर देती हैं। रामायण गीता के आध्यात्मिक विश्लेषण से गीता ज्ञान दाता का संदेश देती हैं। राजयोग की अनुभूति से योग की दिव्य शक्ति से नवयुग निर्माण में आप विशेष सहभागिता निभाती हैं, ऐसी स्पष्ट वक्ता हृदय, सरल हृदय आदरणीय उषा दीदी के प्रैक्टिकल जीवन से कॉन्साइड करता हुआ आज का टॉपिक है हमारा कर्म योगी जीवन। इस पे हम आदरणीय उषा दीदी जी से सुनेंगे। आदरणीय उषा दीदी,
ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज बाप दादा ने गुड मॉर्निंग किया मुरली में, तो इसीलिए गुड मॉर्निंग आप सबको भी। साथ ही साथ आज बाबा के मधुर महावाक्य सुन रहे थे, तो आज के मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे मुझे याद करो। कई बच्चे कहते बाबा फुर्सत नहीं मिलती है, बहुत बिजी रहते हैं। तो बाबा ने कहा अरे ये कोई बहाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म करते भी याद कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते सहज रीति से बाबा को याद करते चलो, क्योंकि याद से ही हमारे विकर्म विनाश होने हैं। तो बाबा ने जैसे योग को इतना सहज सरल किया आज की मुरली में, कि कैसे निरंतर हम कर्म योगी बने। बाबा की एक मुरली याद आती है जिसमें बाबा ने कहा था बच्चे योग लगाने वाले योगी नहीं चाहिए बाबा को, योग लगाएंगे 2 घंटा 4 घंटा उसके बाद के अब योगी हो जाएंगे, तो योग लगाने वाले योगी नहीं चाहिए बाबा को, योगी जीवन वाले योगी चाहिए, जिसकी नेचुरल जीवन योगी हो। तो योगी जीवन नेचुरल हमारी हो, जहां हमें वो मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन सहज कर्म योगी हो और बाबा की याद भी बनी रहे, ये कैसे हो सकता है। तो उसी पर जो चिंतन चला, कुछ बातें मन के अंदर आई, वो आप सबके सामने आज रखना चाहती हूं कि योगी जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन है। अभी गीत में भी सुना, योगी जीवन जी करके तो देखो कितना सुंदर ये जीवन है। और जिस जीवन को देख करके दूसरों को भी सहजता से प्रेरणा प्राप्त हो कि जीवन हो तो ऐसा हो। कई लोगों के मन में ये भाव जागृत होता है हम लोगों को देख करके कि क्या आपको ये महसूस नहीं होता कि इस जीवन में बड़ी कठिनाई है, नियम है, डिसिप्लिन है, लेकिन बाबा ने इतना सरल कर दिया है, जो चाहे कितने भी नियम हो डिसिप्लिन हो वो भी नेचुरल हो गए हैं हमारी लाइफ में। उसका कारण क्या कि दुनिया के लोगों के जीवन को अगर देखे तो लगता है बंधन वाला जीवन है, और हमारा जीवन अगर देखे तो स्वतंत्र जीवन महसूस होता है। दुनिया के लोगों का जीवन बंधन वाला क्यों लगता है? क्योंकि एक तो बाबा जैसे हमेशा कहते हैं उनमें देह अभिमान है, तो सबसे बड़ा बंधन तो है ही देह अभिमान का। और जहां देह अभिमान है वहां अनेक प्रकार की आसक्तियां हैं, तो आसक्तियों का भी बंधन हो जाता है, ये चाहिए 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 और नहीं मिलता है तो मन घुटने लगता है अंदर में, तो ये भी एक प्रकार का बंधन है। हमारा अनासक्त जीवन है, मिला तो यूज करो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो चलता है उसके बिना भी, ऐसे बाबा ने हमें अभ्यासी बना दिया है। तीसरी बात कि दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो स्वार्थ वाला जीवन है, और जहां स्वार्थ है, स्वार्थ पूर्ति हुई तब तक तो ठीक है, स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई तो भी बेचैन कर देता है। तो देह अभिमान वाला जीवन भी बंधन क्रिएट करता है, हर पल हर कदम में बंधन क्रिएट करता है, आसक्ति अनेक प्रकार के बंधन में बांधती है, स्वार्थ अनेक प्रकार के बंधन में बांधता है, जबकि बाबा ने उसके विपरीत हमारा जीवन स्वतंत्र इसीलिए बना दिया क्योंकि देही अभिमानी है। और जितना जितना देही अभिमानी बनते जाते हैं उतना देह अभिमान के बंधनों को तोड़ते जाते हैं, समाप्त करते जाते हैं। दूसरा जैसे कहा अनासक्त वृत्ति, बाबा ने ऐसी हमारी बना दी कि अनासक्ता है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, बहुत अच्छा। क्योंकि भगवान ने हमें पहले ही सुना दिया कि अंतिम समय में ये साधन भी सारे फेल होने वाले हैं, ये साधन भी काम आने वाले नहीं हैं। तो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर कर दिया हमें, तो है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। और दूसरा, तीसरा, हमारे अंदर वो स्वार्थ भाव नहीं, सेवा भाव है। हर चीज को बाबा ने परिवर्तन करना सिखाया कि स्वार्थ में बंधन है, सेवा भाव आप लाओ। स्वार्थ मन मुझे चाहिए, सेवा मन दूसरों को दो। जब दूसरों को देना शुरू कर देते हैं तो अपने आप हमें भी प्राप्त होने लगता है। देना शुरू करो। बाबा इसीलिए कई बार कहते, देने में ही तो लेना है। देना शुरू करो तो अनेक दुआएं, अनेक रूप से खाता हमारा जमा होने लगता है। तो सेवा भाव वाला जीवन स्वार्थ भाव को खत्म कर देता है। मुझे ही चाहिए, ये भाव ही खत्म हो गया। तो न मैं है न मेरा है, ये दोनों भाव से बाबा ने ऊपर कर दिया। तो इसलिए गृहस्थ जीवन में होते हुए भी नेचुरल कर्म योगी बनना ये बाबा ने हमें सिखाया। तो अनेक प्रकार के बंधन हमारे कटने लगे और सहजता से उन सारे बंधनों से ऊपर उठ गए। जो सबसे पहली बात कही कि देह अभिमान को समाप्त करके देही अभिमानी बाबा ने बनाया। कर्म योगी जीवन के लिए देही अभिमानी स्थिति बहुत आवश्यक है, क्योंकि आत्म अभिमानी माना जब आप योग में बैठेंगे तब आत्मस्मृति में स्थित होकर के बैठेंगे, आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप होकर के बैठेंगे। लेकिन बाबा ने हमें कोई एक जगह बैठने वाला योगी तो बनाया नहीं। बाबा ने कहा आपको अपनी गृहस्थी भी निभानी है, आपको अपना कर्तव्य भी करना है, आपका जिम्मेवारी भी निभानी है, ये सब कुछ करते हुए भी कर्म योगी बनना है, बैलेंस रख करके चलना है, तो उसके लिए देही अभिमानी बनना बहुत आवश्यक है। देही अभिमानी का मतलब क्या है? देही अभिमानी मतलब, अगर मैं थोड़ा उल्टा करके पूछूं, देह अभिमान का मतलब जब किसी को भी आप देखते हैं और वो व्यक्ति बड़ा देह अभिमान में अगर काम कर रहा होता है, उसको देख करके कई बार हम कमेंट पास कर देते हैं, बड़ा देह अभिमानी है, बड़ा अभिमानी है। कैसे पता चला आपको कि अभिमानी है? क्या दिखाई दिया उसके कर्म में जो आपको पता चला कि ये अभिमानी है? कैसे पता चलता है कोई अभिमानी है? कैसे पता चला उसके कर्म में? ऐसा क्या होता है? क्योंकि कोई लेबल तो लगा नहीं, ये व्यक्ति अभिमानी है, तो ऐसा क्या उसके कर्म में दिखाई दिया जो आपको पता चल गया कि ये अभिमानी है, दे अभिमानी? तो उसके कर्म में कोई न कोई प्रकार के विकारों की बदबू जरूर आएगी। कहां ईर्ष्या की बदबू आएगी, कहां द्वेष की बदबू आएगी, कहां पर अनेक प्रकार के गुस्सा, क्रोध, आवेश, ये सब भाव जागृत होने लगते हैं। अगर उसका कार्य पूरा नहीं हुआ या उसकी चाहना के हिसाब से नहीं हुआ तो उसको गुस्सा भी आना है। देखने वाला यही कहेंगे, देखा गुस्सा आया ना इसको। अपने हिसाब से उसको चलना चाहिए, अपने हिसाब से उसका हर कर्म करना चाहिए, तभी वो संतुष्ट है, नहीं तो गुस्सा ही जाता है। तो ये गुस्सा अभिमान की निशानी है। ईर्ष्या में आकर किसी की निंदा करता है तो लोग कहने वाले यही कहते, देखो उसको अपना नशा कितना है कि दूसरे कोई अच्छा भी होगा तो भी उसको गिराने का प्रयत्न करेगा, कितना अभिमानी है। तो अभिमान माना कोई ना कोई कमजोरी के वशीभूत होकर के कर्म करना, उसको कहा देही अभिमान, देह अभिमानी। तो देही अभिमानी माना कोई ना कोई सद्गुण का वाइब्रेशन उसमें से आना। जब कोई भी कर्म हम करते हैं, बहुत प्रेम से आप कर्म करो, जब आप प्रेम से कर्म करते हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, उसमें मधुरता समाई हुई है, तो सुनने वाला भी कहता है ये तो जैसे देवता है, इसके मुख से तो फूल झड़ते हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाता है, फूल झर रहे हैं, मोती झर रहे हैं। तो जहां हमारे हर व्यवहार के अंदर कोई ना कोई सद्गुण का प्रवाह है, वाइब्रेशन है, जहां हमारे कर्म के द्वारा कोई ना कोई सद्गुण प्रकट होते हैं, किसी से भी आप कर्म कर रहे हैं, किसी को सहयोग चाहिए, आपने अपना सहयोग दे दिया, कितना अच्छा लगता है सामने वाले को, वो यही कहेगा ये तो जैसे देवता है। बाबा भी हम बच्चों को यही चीज सिखाना चाहते हैं कि बच्चे तुम सतयुगी दुनिया में जा रहे हो तो तुम्हें कैसा बनना है, हर कर्म में वो रॉयल्टी चाहिए, हर कर्म में वो सद्गुण होने चाहिए, तभी तो सर्वगुण संपन्न का गायन होगा, वो गुण तो यहाँ ही भरना है ना, और बिना कर्म के व्यवहार के वो गुण प्रदर्शित नहीं होता है। कोई कितना भी कह दे मैं तो बहुत मधुर भाषी हूं, कैसे पता चलेगा, व्यवहार से ही तो पता चलेगा। मैं तो हरेक को सहयोग देता हूं, कहने से थोड़ी होता है, प्रैक्टिकल दिखाई देना चाहिए, कर्म में व्यवहार में। तो सद्गुण का प्रवाह जहां जिस कर्म में है उसको कहा जाता है यह देही अभिमानी होकर कर्म कर रहा है, देही अभिमानी। तो जब देही अभिमानी स्थिति में हम स्थित होकर के कर्म करते हैं तो उस कर्म द्वारा दूसरे को सुख देते हैं, जब सुख देते हैं सामने वाले को सुख मिलता है तो उससे दुआएं प्राप्त होती है। ये है कर्म योगी, जहां हर कर्म कमाई कराने वाला हो, आत्मा का जमा का खाता बढ़ाने वाला हो, उसको कहते हैं कर्म योगी जीवन, हर कर्म प्राप्ति कराने वाला हो, जमा का खाता बढ़ाने वाला हो, दुआएं प्राप्त कराने वाला हो, दूसरों को सुख देने वाला हो। जब बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि बच्चे दधीची ऋषि के समान बनना है, कि जिस तरह दधीची ऋषि ने अपनी हड्डी हड्डी को क्या किया, यज्ञ में स्वाहा किया, ये हमारा ही तो यादगार है कि यज्ञ सेवा करते हुए जितना दूसरों को सुख दे सकते हैं ये हड्डियों के द्वारा, उतना दुआओं की प्राप्ति स्वतः प्राप्त होती है। तो कहा कि हड्डियों को भी गला दिया, इसको कहा नेचुरल कर्म योगी। तो देही अभिमानी होकर के कर्म करना। दूसरा कर्म योगी माना जिसके हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार हो। कर्मेंद्रिया हमें परवश न बनाए, लेकिन कर्मेंद्रिय को मालिक बन करके प्रयोग करना। जब मालिक बन करके प्रयोग करते हैं, मैं अधिकारी बन करके कर्म इंद्रियों का प्रयोग करती हूं, तो कभी भी वो आसक्ति में नहीं आ सकता है, अनासक्त होकर के कर्म करेगा, उससे न्यारा और प्यारा। कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करना माना जहां बेहद की वैराग्य वृत्ति नेचुरल रूप में हो। राज ऋषि बाबा कहते ना, स्वराज्य अधिकारी जिसका अपनी इंद्रियों के ऊपर अधिकार है वो अयोग्य न शब्द बोल सकता है न अयोग्य कर्म कर सकता है। जिसके लिए लोग कह सके अरे ये कैसा कर्म किया, देखो ये भगवान का बच्चा, ये बीके है, ये ऐसा कर्म कर रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, नहीं, कोई भी अयोग्य शब्द, अयोग्य बोल, अयोग्य व्यवहार हमारा न हो, हमारी इंद्रियों के द्वारा इतना हमारा अपने इंद्रियों के ऊपर अधिकार। जैसे बाबा ने कुछ समय पहले भी लास्ट संडे की मुरली में, ये संडे नहीं, लास्ट संडे की मुरली में बाबा ने कहा था कि ब्रह्मा बाबा रोज रात को अपनी दरबार लगाते थे और बाबा अपने मन रूपी मंत्री को पूछते थे कि हे मुख्यमंत्री, आज तेरे कर्मचारी सभी ठीक चले, कोई कर्मेंद्रिय ने तुझे धोखा तो नहीं दिया? तो ये अपना चार्ट रखना और रात को देखते हुए भाई आज कोई कर्मेंद्रिय ने मिसबिहेव तो नहीं किया, आज कोई कर्मेंद्रिय ने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया, ये अपना स्वयं को देखना कि मेरे मैं आत्मा अगर मालिक हूं, अधिकारी हूं, तो मेरा हर कर्मेंद्रिय लॉ एंड ऑर्डर में चले, डिसिप्लिन होकर के रहे, कभी कोई कर्मेंद्रिया उत्पात न मचाए। जो कई बार कोई कहते हैं कि बोलना तो नहीं चाहते थे निकल गया, करना तो नहीं चाहते थे हो गया, तो बाबा इसीलिए कहते हैं उसको स्वराज्य अधिकारी तो नहीं कहेंगे ना। तो कर्म योगी माना ये देखना है कि मेरी हर कर्मेंद्रिय के ऊपर मेरा संपूर्ण अधिकार है, और वो तभी होगा जैसे कहा कि स्वार्थ भाव नहीं सेवा भाव हो। ये कर्मेंद्रिय द्वारा मुझे सबको सुख देना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ये कर्मेंद्रिय के प्रति ये नहीं सोचना ये कर्मेंद्रिय को मैं आराम दूं, मैं अपनी कर्मेंद्रिय को सुख दूं, जो खुद की कर्मेंद्रिय को सुख और आराम देता है समय पर धोखा जरूर खाता है। इसीलिए बाबा कहे तुम दूसरों को सुख देने का सोचो कि ये कर्मेंद्रिया दूसरों को सुख देने के काम आए। जब दूसरों को सुख देने का सोचते हैं तो कभी भी ये कर्मेंद्रिया खुद को धोखा नहीं दे सकती। आराम पसंद बनाते जाएंगे तो क्या होगा, ये कर्मेंद्रिया आलसी हो जाएगी, ये कर्मेंद्रिया अनेक प्रकार के रूप से हमें धोखा देती रहेंगी और हमें मजबूर कर देंगी। कभी कभी जितना आराम पसंद होगा तो मजबूर करेंगे, जब कर्म करने का समय भी होगा तो भी आलस आएगा, नहीं छोड़ो बाद में कर देंगे या कोई और कर देगा, मुझे तो आराम करना है। तो हमारा जमा का खाता तो बना नहीं। इसलिए बाबा कहे ये कर्मेंद्रिय को इस तरह से आप हैंडल करो, इस तरह से चलाओ कि उसको ज्यादा आराम नहीं दो, जितना हो सके दूसरों की सेवा में उसको संलग्न करते जाओ। जितना दूसरों की सेवा में ये व्यस्त रहेगा उतना मस्त रहेगा और स्वस्थ रहेगा। अगर ये व्यस्त नहीं है तो न मस्त है ना, यानी मौजों का अनुभव नहीं कराता है, आनंद का अनुभव नहीं कराता है और न स्वस्थ रहता है। आराम पसंद होगा तो आज यहाँ दर्द करेगा, यहाँ दर्द करेगा, ये दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है, रोज उसकी शिकायत यही होंगी, आज बहुत दर्द कर रहा है, आज बहुत दर्द कर रहा है। और कई लोगों को देखो जिसने अपने कर्मेंद्रियों को आराम पसंद नहीं बनाया है, वो बुजुर्ग होते हुए भी कितना सेवा कर रहे हैं बाबा के यज्ञ के अंदर, बैठते नहीं है, दौड़ते रहते हैं। उनको कहो भाई तुम आराम करो, अरे क्या आराम करना, फ्रेश है, चलो आगे बढ़ते ही जाते हैं। भावार्थ ये है, जिस तरह से आप इसको ट्रेन करेंगे, जिस तरह से हैंडल करेंगे, ये कर्मेंद्रियां वैसे ही हो जाएगी। और इसलिए समय पर ये आपको मजबूर करेंगी कि नहीं, जब रियल सेवा का समय होगा, रियल कोई कार्य होगा, तभी भी ये कर्मेंद्रिय मजबूर कर देंगे, छोड़ो कल करेंगे। और कल उसका कभी आता ही नहीं है, कल कल करते काल खा जाता है और कमाई हुई ही नहीं। इसलिए जितना इस कर्मेंद्रिय को कसो, कहते पहले के जमाने के लोग आराम नहीं करते थे, कसते थे अपने इंद्रियों को भी, जितना इसको कसेंगे ये निखरता जाएगा और उसकी कर्मेंद्रियां भी अनेक रूप से बाबा के सेवा करेगी और उसका सुख दूसरों को अनुभव कराएगा। दूसरों को सुख देने में ही उस आत्मा को भी सुख की प्राप्ति होगी। दूसरों को सुख दे करके संतुष्टता और आनंद का अनुभव होगा। इसलिए इसको आराम पसंद नहीं बनाओ, इसको हमेशा व्यस्त रखो, अपने कोई न कोई कर्म में उसको बिजी रखो। बिजी रहेंगे तो बाबा की याद भी रहेगी और सहजता से ये होगा भाव अंदर में कि बस बाबा के सेवा करते करते हमारा प्राण तन से निकले, और सचमुच में ऐसा ही होगा। इसलिए इसको क्या करो, बिजी रखो। लेकिन ये बहाना नहीं देना है, हम तो बहुत बिजी है, बाबा को याद कब करें, उसी में याद करते जाओ, ठीक है ना। तीसरी बात, कर्म योगी बनना माना, हमेशा ये याद रहे करण करावन हार करा रहा है, मैं निमित्त हूं, मैं करण हार हूं। तो बाबा करा रहा है, ये भाव जितना अंदर आएगा उतना स्वयं निर्माण और निर्मल रहेंगे। जहां ये भाव आया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ऐसा कर रही हूं, मैं ऐसा कहती हूं, मैं ऐसा, तो वो मैं जो बाबा ने कल मुरली में कहा, मैं कि क्या करो, बलि दे दो, अभी तो बलि दो, अभी नहीं देंगे तो कब देंगे। तो इस शिवरात्रि पर क्या करना है, क्या करना है, इस मैं की बलि सचमुच में चढ़ा देनी है, बाबा को अर्पित कर देना है। और हमेशा ये भाव जागृत रहे, करण करावन हार बाबा करा रहा है, तो हल्के रहेंगे, बेफिक्र बादशाह रहेंगे। बादशाह बनना है भविष्य में भी, और यहाँ तो यहाँ पहले बादशाह बनना पड़े ना, तो बेफिक्र बादशाह, मैं हमें नीचे ले आता है, बाबा बाबा करते चलो तो स्वतः ऊपर उड़ते रहेंगे, मस्त रहेंगे और बादशाह का अनुभव करेंगे, जैसे हल्के हो करके हर कार्य कर रहे हैं। तो बाबा की याद नेचुरल रहेंगी, जब बाबा बाबा करेंगे, कराने वाला बाबा है, मैं तो निमित्त हूँ, तो बाबा करा रहा है, ये भाव जितना अंदर में जागृत रहे, यही तो बाबा की याद है, इसी को ही तो सहज याद कहा जाता है। और जब इस तरह की याद हमारी नेचुरल बन जाएंगी, हर कर्म में बाबा करा रहा है, कभी बाबा को साथी बना दो, कभी बाबा को साथ लेकर के चलो, कंबाइंड होकर के करो बाबा के साथ, फिर देखो कितना हल्कापन जीवन के अंदर आ जाएगा, कभी भारीपन ही नहीं आएगा। जैसे लग रहा है कि उड़ रहे हैं, ये कर्मेंद्रिय से कर रहे हैं, चल रहे हैं, ये महसूस नहीं होगा, उड़ रहे हैं करते हुए भी, है ना। तो बाबा समाया हुआ हो हर कर्म में, तो उस कर्म में कभी कोई प्रकार की त्रुटि नहीं होगी, कोई प्रकार की डिफेक्ट नहीं होगी, हर कर्म परफेक्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा कराने वाला है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं निमित्त हूँ, ये भाव जितना आया तो निर्माणता। कोई अगर महिमा भी करेंगे तो भी कहेंगे बाबा। कल बाबा की मुरली में आया सूक्ष्म मैपन, कल कहा ना बाबा ने, स्थूल मैपन को तो छोड़ दिया, लेकिन सूक्ष्म मैपन कौन सा है कि जो विशेषता बाबा की देन है, उसका जैसे घमंड आ जाना कि हाँ ये मेरी विशेषता है, ये फीलिंग में आना, तो इस फीलिंग से भी ऊपर जाओ, तब कहेंगे कि ये सूक्ष्म मैपन को भी हमने काट दिया। सूक्ष्म पे कोई विशेषता का वर्णन करे, महिमा करे, तो क्या कहो, अरे ये विशेषता भी तो उसी की देन है। अर्पित कर दो, अर्पित कर दो। जैसे ही अर्पित करेंगे ना, वैसे खुद हल्के हो जाएंगे। और ये बाबा को अर्पित कर देना, माना बाबा को हमने उस आत्मा के सन्मुख भी प्रत्यक्ष किया। एक एक आत्मा के सामने इस तरह से भी बाबा को प्रत्यक्ष करते जाएंगे तो जरूर बाबा आपको निमित्त बनाएगा प्रत्यक्षता के लिए। तो बाबा की प्रत्यक्षता के लिए निमित्त तो बनना है ना, जो जहां भी होगा, गांव में होगा, कहां भी होगा, भगवान की प्रत्यक्षता के निमित्त तो हम सब बच्चे हैं ना। लेकिन कैसे प्रत्यक्ष करेंगे, तो हमेशा ये भाव सूक्ष्म में भी जागृत रहे, करण करावनहार बाबा है, बाबा करा रहा है। जैसे बाबा ने कहा, मम्मा का भी स्लोगन था, हुक्मी हुक्म चलाए रहा है। दादी का भी स्लोगन था, बाबा कराने वाला है। तो ब्रह्मा बाबा का भी ये स्लोगन था, बाबा सब कुछ करता है। जब ये भाव होगा तो बाबा रिस्पॉन्सिबल भी बनेगा। अगर मैंपन आ गया कि ये मेरी विशेषता है, तो बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेगा। और उस कर्म में कोई ना कोई त्रुटि अवश्य होगी, डिफेक्ट अवश्य होगी। तो हर कर्म मेरा परफेक्ट हो, उसके लिए बाबा पर उसको अर्पित कर दो। दुनिया के लोग भी अगर आप देखेंगे, जो बड़े महानता के शिखर पर धीरे धीरे पहुंचते हैं, वैसे ही नहीं पहुंचते हैं। वो कोई भी बात का क्रेडिट खुद नहीं लेते हैं, वो हमेशा वो क्रेडिट ईश्वर को देते हैं। मुझे याद आता है कि जब लता मंगेशकर जी के 75 इयर्स गीत के थे, प्लैटिनम जुबिली जब मनाई गई थी, तो उस वक्त उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि जब मैं पहली बार गीत गाया, पहली बार पहला गीत जब मैंने गाया, तो उस समय की जो मशहूर गायिका थी, नूरजहां थी या पता नहीं कौन थी, तो उसने बहुत तारीफ की कि बेटी तेरा आवाज बहुत अच्छा है, बहुत तारीफ किया। तो उस समय लता मंगेशकर ने कहा कि मैंने, मेरे मुख से निकल गया कि नहीं नहीं, मैं कहां, आप कहां, मैं कहां, ऐसे आप तो इतने अच्छे हो। क्योंकि उस समय उसका नाम था सारे संसार में नूरजहां का, तो इसीलिए उसने कहा नहीं नहीं, मैं कहां आपके आगे, मैं कहां, ऐसे उसने कुछ कहा। तो उसने उसको कहा कि बेटी, जब तेरी कोई तारीफ करे तो नाना नहीं करना चाहिए। जैसे ही हम कहते नहीं 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 नहीं, मैं कहां, माना हम खुद के लिए नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। और खुद के लिए जब नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं कहां, तो आपका जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो धीरे धीरे रिग्रेशन में चला जाएगा, तो आप कभी ऊपर नहीं आएंगे। लेकिन जब आपकी कोई महिमा करे, तो उस समय आप यही कहो, अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह को अर्पित कर दो, वो जो क्रेडिट है, जिसने दिया, महिमा किया, वो क्रेडिट है, वो क्रेडिट उसको अर्पित कर दो, तो उससे आपका प्रोग्रेस डबल हो जाएगा, कभी आपके लाइफ में रिग्रेशन नहीं आएगा। तो कोई महिमा करते हैं, नहीं 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 मैं कहा मेरे से तो नहीं होता है, तो खुद के प्रति नेगेटिव संकल्प को क्रिएट करना तो ये खुद को माइनस में ही ले जाएगा, आगे उठने नहीं देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। तो जब आपकी कोई तारीफ करे, जब आपकी कोई महिमा करे, तो यही कहो ये विशेषता भी उसी की देन है। ऐसे कहते हुए उसको अर्पित कर दो, बाबा को समर्पित कर दो। तो ये कितना ऊंचा भाव, लौकिक दुनिया वालों का भी अगर ऐसा भाव हो। और उसने कहा तब से लेकर के मैंने अपने जीवन में सीखा कि खुद के लिए भी मुझे नेगेटिव कभी नहीं बनना है। जब भी कोई तारीफ करता था मैं कहती थी अल्लाह की मेहरबानी है, ऐसे कह करके उसको दे, तो मेरा प्रोग्रेस होता ही गया और मैं धीरे धीरे नंबर वन पर आ ही गई। कि आज तक भी लोग उसके गाने की तारीफ करते ही है, उसके आवाज की तारीफ, क्योंकि उसने कभी अपने प्रति नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होने दिया। इसको कहा जाता है कर्म योगी जीवन। जो कर्म करो निष्ठा से करो, जो कर्म करो उसमें जो परफेक्शन लाते हैं निमित्त भाव से, और जब उसकी मेहरबानी समझते हैं या उसको अर्पित कर देते हैं उस तारीफ को भी, तो और भी बाबा का आशीर्वाद, बाबा की दुआएं हमें प्राप्त होने लगती है। तो वो कर्म और भी निखरने लगता है, चाहे कोई भी कर्म क्यों ना हो, वो कर्म निखरने ही लगता है और उसमें संपूर्णता स्वतः आने लगती। ये है नेचुरल कर्म योगी जीवन। तो कभी भी महिमा तो करेंगे सभी, आप कोई भी अच्छा काम करेंगे, क्योंकि विशेषता उसकी देन है। जब विशेषता उसकी देन है तो वो कर्म तो अच्छा होगा ही, इसलिए लोग महिमा भी करेंगे। तो कभी ना ना नहीं करो, लेकिन उस वक्त अंदर में यही भाव हो, थैंक्स बाबा, शुक्रिया बाबा, और बाबा को उसको अर्पित कर दो। चाहे स्थूल में बोल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, जहां आप बोल नहीं सकते हैं तो वहां पर सूक्ष्म में बाबा को थैंक्स करते हुए, शुक्रिया करते हुए, बाबा ये महिमा भी आपकी महिमा है, ऐसे करके बाबा को याद करते जाते हैं। तो हर पल में बाबा की याद नेचुरल रूप में समाने लगती है और वो कर्म भी निखरता है, पॉलिश्ड होता जाता है। और जैसे जैसे पॉलिश्ड होता जाता है तो वो कला स्वतः आ जाती। तो जो 16 कला संपूर्ण होना है वो वैसे ही एक एक कला को निखारते जाओ, एक एक सद्गुण को निखारते जाओ, देखो आपका जीवन सर्व गुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण यहां पर ही आप बनाते जाएंगे। तो ना नहीं करो, लेकिन देह अभिमान में भी नहीं आओ, अर्पित करो। कितना ऊंचा भाव है ये। तो कर्म योगी जीवन माना, हर विशेषता ईश्वर की देन है, उसकी बदौलत से हमें ये प्राप्त हुई है, बाबा का बनने के बाद ये मिली है। तो हर कर्म उसको जब अर्पित करते हैं, करने के बाद तो बाबा संभाल लेता है, बाबा उसमें कभी भी कोई दोष आने नहीं देता है और खुद भी हल्के होकर के आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते कर्म योगी। चौथी बात, कर्म योगी माना हमेशा बाबा का श्रीमत का हाथ अपने सिर पर अनुभव करना, कि बाबा का श्रीमत का हाथ मेरे ऊपर है, या बाबा का श्रीमत रूपी हाथ पकड़ करके चलना, हर कर्म करना, ये है कर्म योगी बनना। बाबा का हाथ कौन सा है? श्रीमत ही बाबा का हाथ है। तो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक बाबा ने हर बात की श्रीमत हमें बता दी है। तो जब बाबा ने हर बात की श्रीमत हमें बताई है और उस श्रीमत के आधार पर कर्म करते हैं तो हमारे कर्म में बल आता है, श्रेष्ठ कर्म का बल, श्रीमत का बल आता है। और वो बल क्या करता है? जो ये कर्मेंद्रिय से पहले गलत कर्म हुए हैं ज्ञान से पहले, उसका हिसाब किताब भी तो साथ में है ना आत्मा में। तो कर्म भोगना को समाप्त करता है, तो श्रेष्ठ कर्मों का बल कर्म भोग को सहजता से समाप्त करता। इसीलिए ब्रह्मा बाबा से भी जब ये बात पूछी गई कि बाबा अंतिम समय में आपकी अवस्था कैसी थी, तो बाबा ने कहा कर्म योग और कर्म भोग की लड़ाई थी, कर्म भोग और कर्म योग की लड़ाई थी, और उसमें कर्म भोग के हाथ पैर ढीले हो गए और कर्म योग विजयी हो गया। तो कर्म योगी माना ही, जितना श्रीमत के अनुसार हमारा हर कर्म होगा, यानी बाबा का श्रीमत रूपी हाथ पकड़ करके हम हर कर्म करते हैं या अनुभव करते हैं बाबा का श्रीमत का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और मैं एक कर्म कर रही हूँ, तो वो श्रीमत का बल श्रेष्ठ कर्म बना देगा और श्रेष्ठ कर्म का बल कर्म भोग को समाप्त करने के निमित्त बन जाएगा। कितनी ऊंची बात है ये बात। इसीलिए बाबा कहे नेचुरल कर्म योगी बनो, क्योंकि नेचुरल कर्म योगी बनने से कई हिसाब किताब हम अपने श्रेष्ठ कर्म के बल से चुकतु करते जाएंगे। कुछ तो योग बल से चुकतु होगा, लेकिन कुछ तो श्रेष्ठ कर्मों के बल से भी तो चुकतु करना है ना। तो श्रेष्ठ कर्म का बल गलत कर्म जो किए हुए हैं उसको धीरे 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 माइनस करते जाते, उसकी भोगना को क्षीण करते जाते हैं। वो अगर आता भी है निमित मात्र आता है, लेकिन जैसे मक्खन से बाल की तरह निकल जाता है, वो हमारी स्थिति को फ्लक्चुएट करने के लिए निमित नहीं बनता, हलचल में नहीं लाएगा, लेकिन हमें सहजता से वो क्या करेगा, हल्का रखेगा। नहीं तो जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे ये कर्मों का हिसाब किताब भी तो चुकतु करना पड़ेगा। कई रीति से भोगना आती है, तो ये भोगना क्या है, कर्म का हिसाब किताब ही तो है। जहाँ ब्रह्मा बाबा को भी चुकतु करना पड़ा, मम्मा को भी करना पड़ा, दादियों को भी करना पड़ा, तो हम सभी तो कौन है, करना तो पड़ेगा हर एक को, क्योंकि 63 जन्म के कार्मिक अकाउंट है। लेकिन श्रेष्ठ कर्म करने से क्या होगा, वो जो हिसाब किताब है वो आएगा, निमित मात्र आएगा, लेकिन हमारी स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। आया और चला गया। जैसे मिसाल देती हूँ कि कभी आप रास्ते पर जा रहे हो और एक्सीडेंट होता है, तो जो घात है उस स्थान के साथ, जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ उस व्यक्ति के साथ का जो हिसाब था, वो हिसाब तो आया, वो तो चुकतु करना पड़ेगा, वो होनी जो है उस होनी को कोई टाल नहीं सकते हैं। कितना भी आप योग लगाओ तो ये योग होनी को टाल नहीं सकता है, लेकिन वो होनी हुई, लेकिन उस एक्सीडेंट में आपको एक खरोच तक नहीं आई, तो वो एक्सीडेंट हुआ और चला गया, आपको कुछ नहीं, आप सुरक्षित रहे, क्योंकि आपका श्रेष्ठ कर्म का बल, दुआओं का बल, श्रीमत का जो कवच है, उसने आपको हर रीति से प्रोटेक्ट कर लिया। जो होनी है उसको कोई नहीं टाल सकता है, क्योंकि वो होनी भी मेरे पूर्व कर्मों से फिक्स है, होनी होनी ही है, उसको कोई टाल नहीं सकता है, होनी को कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि वो मेरे पूर्व कर्म द्वारा फिक्स किया हुआ है। लेकिन होनी होकर के रहेगी, लेकिन वो होनी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, हमारा कोई हिसाब किताब उसमें नहीं बनेगा। वो आई और चली गई, हमें कुछ भी नहीं हुआ। ये महसूस करेंगे कि बाबा की शक्तियों का कवच हमारे ऊपर है, तो श्रेष्ठ कर्मों का बल क्यों चाहिए, दुआओं का बल हमारे जीवन में क्यों चाहिए, क्योंकि यही हमें हर होनी में भी सुरक्षित रखेगा, सुरक्षित रहेंगे। तो श्रेष्ठ कर्म का बल हर प्रकार की भोगना को समाप्त कर देता है। अगर श्रेष्ठ कर्म का बल नहीं होता था, दुआओं का बल नहीं होता था, तो एक्सीडेंट ऐसे होता जो पता नहीं खून से लथपथ होंगे, कितना प्रकार से आपको भोगना, दुख दर्द भोगना पड़ता। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का बल ऐसा कवच बन जाता है, जो होनी हुई लेकिन आप सुरक्षित बाहर आ गए, आपको कुछ नहीं हुआ। हमारी दादियों को, बाबा को, मम्मा को इतने शारीरिक भोगना होते हुए भी कभी उन्होंने महसूस ही नहीं किया। दूसरे दिन जब डॉक्टर देखने आता था तो मुस्कुराते हुए जब डॉक्टर साहब से मिलते थे, डॉक्टर साहब आप कैसे हो, तो डॉक्टर कहता था, ये सवाल तो मुझे आपको पूछना चाहिए, आप मुझे पूछते हो। बाबा का भी अनुभव है, मम्मा का भी अनुभव है, दादियों का भी यही अनुभव है। यानी वो कर्म भोग उनको महसूस नहीं कराता था कि इतना बड़ा पेपर है, दूसरों के लिए तो कितना बड़ा शारीरिक पेपर हो जाता है, लेकिन हमारे लिए पेपर ही नहीं लगता है। तो इसीलिए कहा कि श्रेष्ठ कर्म का बल हमें हर रीति से बहुत पावरफुल बना देता है, और इसी को कहा जाता है नेचुरल कर्म योगी जीवन। जो नियम मर्यादाएं श्रीमत को लेकर के हर कदम चलते हैं, यही तो कर्मयोगी जीवन है। और पांचवा, कर्मयोगी जीवन माना योग युक्त होकर के हर कर्म करना। योग युक्त माना बाबा की याद जहां है, जिस कर्म के अंदर, वो कर्म हमारा यादगार बन जाता है ना, यादगार बन जाता है। मुझे याद आता है जब मम्मा का अंतिम दिन था, अंतिम दिन, और मम्मा को बहुत ज्यादा बीमारी फैल गई थी, तो उस कारण से मम्मा सारी रात सो नहीं पाई थी। और दिन में जैसे ही सुबह नाश्ता करने के बाद थोड़ी सी आंख लगी, बैठे बैठे आंख लगी, सो नहीं पाते थे मम्मा, तो बैठे बैठे ही आंख लगी। इतने में बाबा का बुलावा आया कि मम्मा आप अंगूर बांटेंगे सबको। मम्मा ने कहा, जी बाबा। तो मोहिनी दीदी गए बाबा के पास के बाबा, मम्मा सारी रात सोई नहीं है, अंगूर ही तो बांटना है, मैं बांट देती हूँ। मम्मा की आंख लगी थी तो मम्मा को रेस्ट करने दो, भावना बड़ी अच्छी थी। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, मम्मा ही बांटेंगी। मम्मा ने बांटा, अंगूर बांटा, 12-1 बजे तक अंगूर बांटा सबको, और 4 बजे तो मम्मा ने शरीर छोड़ दिया शाम को। दूसरे दिन फिर मम्मा की ये बात समझ में आई कि बाबा ने क्यों मम्मा को कहा कि अंगूर बांटो, कि वो कर्म मम्मा का यादगार बन गया। तो आज तक यज्ञ में 24 जून माना अंगूर बंटता ही है। कैसे वो कर्म बाबा की याद में जो किया है, दिव्य बुद्धि युक्त होकर के जो कर्म किया है, तो वो कर्म बाबा का याद के अंदर किया गया, यादगार बन गया। आज तक जैसे यज्ञ के अंदर ये प्रणाली हो गई, 24 जून माना अंगूर बटेगा ही बटेगा, तो यादगार बन गया ना। तो जो योग युक्त होकर के कर्म करते हैं, वो कर्म यादगार बनते हैं। जो योग युक्त होकर कर्म करते, माना खुशी से कर्म करना, मजबूरी में कर्म नहीं करना, करना पड़ रहा है ये समझ के नहीं करना, खुशी से करना, इसको कहते योग युक्त होकर कर्म करना। आनंद से कर्म करना, जहां खुशी है, आनंद है, तो नेचुरल है वो कर्म तो यादगार बनना ही है। तो इसीलिए कर्म योगी जीवन माना, जहां मैपन न हो, देही अभिमानी होकर कर्म करते। कर्म योगी जीवन माना कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार हो। कर्मयोगी जीवन माना करण करावन हर बाबा करा रहा है ये भाव हो। चौथा कर्म योगी जीवन माना, श्रेष्ठ कर्म का बल हो, श्रीमत का हाथ पकड़ करके हर कर्म करने वाले हो, और योग पांचवा है योग युक्त होकर कर्म करना और हर कर्म को यादगार बना देना जिसमें से अनेकों को प्रेरणा प्राप्त हो, ऐसा हमारा कर्म हो। अच्छा, ओम शांति।
बहुत 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 धन्यवाद दीदी, प्रैक्टिकल में कर्मयोगी जीवन के ये पांच सूत्र आपने दिए और अंतिम सूत्र यादगार बन जाए, इसको हम अगर बुद्धि में रखेंगे तो हमारा कर्मयोगी जीवन श्रेष्ठ जीवन एक्यूरेट बन जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। एक हाथ की ताली से सभी अभिनंदन धन्यवाद करेंगे दीदी का। दो मिनट योग में बैठेंगे। पहले हमारे बीच में एक छोटी सी ब्रह्मा कुमारी आई है, क्योंकि पावरफुल क्लास सुनने के बाद में थोड़ा सा पावरफुल रिफ्रेशमेंट भी हो जाए, उसके लिए एक छोटी सी ब्रह्मा कुमारी आई है जिसका नाम है हंसी।
ओम शांति। मेरा नाम हंसी विश्वकर्मा है और मैं जालोर सिंदरी से आई हूँ। मैं आपको कुछ लाइनों के साथ गीतों की प्रस्तुति देना चाहती हूँ। हे परमात्मा, अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा घमंड तोड़ देना। अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। अगर आपका कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी ग्रहणा बुझा देना। अगर आपका कुछ मारने का मन करे तो मेरी इच्छाएं मार देना। मैं शब्द तुम अर्थ, मैं शब्द तुम अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ। धन्यवाद।
इतनी कृपा बाबा बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा बाबा बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा हो दम तक सेवा में।
बाबा की पुरानी यज्ञ रतन।
आप सभी लोगों ने मेरा बहुत 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 दिल से साथ दिया है, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से मेरा धन्यवाद है। थैंक यू आप सभी लोगों को,
और थैंक यू कुमारी हंसी को जो बाबा की गोदी में बाबा की सेवा को याद करते करते गई और यज्ञ की पुरानी आत्मा वापस बाबा का आह्वान कर रही है, बाबा की सेवा के आह्वान कर रही है।
और थैंक यू बाबा को भी।
अभी हमारे बीच में आदरणीय शीलू दीदी भी आ चुकी हैं, दो मिनट बाबा को याद करके फिर हम आदरणीय शीलू दीदी का भी क्लास सुनेंगे।